और विश्वासघातियों को समाप्त किया जाए। राज परिवार के साथ तनिक भी हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदारी फ्रांस के क्रांतिकारियों की होगी। उसने स्पष्ट कर दिया कि लुई के मित्र शासकों ने उसके अधिकार वापस दिलाने का निर्णय ले लिया है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो पेरिस को विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए। इस घोषणा ने फ्रांस को झकझोर दिया। यह सरासर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था। अमेरिकन यात्री मोरिस ने लिखा है कि यह तो क्रांतिकारियों के लिए मौत का नियंत्रण था। जिनरोदिस्त दल का प्रभाव घट रहा था और युद्ध ही अंतिम अवसर था। इसी बीच सीमाओं पर तैनात सेना से लाफियत भाग खड़ा हुआ। उसने राजा के पक्ष में विद्रोह कर दिया। अब युद्ध अनिवार्य हो गया था। ब्रुंजविक फ्रांस की सीमाओं में प्रवेश कर चुका था। फ्रांसीसी सेना पराजित हो रही थी। फ्रांस का सेनाध्यक्ष मन ही मन राजा का समर्थक था। वह जिनरोदिस दल से भी संबद्ध था। अंत में वह दुश्मनों से जा मिला। इसके बावजूद फ्रांस में एक नया सैनिक जन्म ले रहा था। एक नया नेतृत्व, नया उत्साह भर रहा था। इस समय वकील मोरो, वैरा, म्यूरा और कपड़े का व्यापारी जुर्दा सेना में शामिल हुए, जिन्होंने बाद में असाधारण सेनापतियों के रूप में नेपोलियन के समय में ख्याति प्राप्त की। बाल्मी में दुश्मनों की फौज रोक दिया गया और इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। अब फ्रांस के आक्रामक होने की बारी थी। अधिवेशन की ओर से भी सभी देश की जनता का आह्वान किया गया। हमने अपने देश से तानाशाहों को निकाल बाहर किया है। आप भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दें, हम आपके साथ हैं। इसी बीच पेरिस में स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। शंकाकुल वातावरण में 1 सितंबर को कुछ कैदी मार दिए गए थे। अपराधी नहीं पकड़े गए और हत्याओं का जोर बढ़ता ही चला गया। सितंबर हत्याकांड के नाम से कुख्यात घटनाएं कुछ दिनों तक चलती रहीं और सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। यह आग प्रांत में फैल रही थी। जैकोबो लोग इस अराजक स्थिति का लाभ उठाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। कुछ लोग क्रांति के इस रूप से हताश और क्षुब्ध थे। थुरियो ने असेंबली में कहा कि यदि क्रांति के लिए अपराध आवश्यक है तो मैं पहले छुरा से अपना पेट घोंपूंगा। इस अनिश्चितता के बीच स्थितियों पर पुनर्विचार और अप्रासंगिक संविधान का नया प्रारूप ढूंढने के लिए नेशनल कन्वेंशन के चुनाव हो रहे थे।